समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियां भी होंगी और साथ ही उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस या फिर जन्मदिन। श्रोताओं, आज के अंक में मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी सुभगा कौल। सुभगा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार अतहर, गुड इवनिंग लिसनर्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योर फेवरेट न्यूज मैगजीन परिक्रमा। वी होप यू आर एंजॉयिंग योर संडे एंड वी आर हियर टू अपडेट यू विद द लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स सेंट इन बाय आवर रीजनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। आवर डेटलाइन इंडिया टॉपिक फॉर टुडे ऑन वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड वी शैल पे रिच ट्रिब्यूट्स टू प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद टुडेज डेट। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज ऑफ द आवर।
बिल्कुल,
election fever at its peak in the country before third phase of Lok Sabha elections due on the 7th of May.
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में कहा, 10 करोड़ से अधिक महिला स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता दी गई और किसानों ने ईंधन में एथेनॉल मिश्रण से 70,000 करोड़ रुपए की कमाई की।
ECI orders re-polling in 6 polling stations of Outer Manipur Parliamentary Constituency on Tuesday.
भारत के धीरज बोम्बा देवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप का स्वर्ण पदक जीता।
And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru, RCB is underway at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we will talk about the World Day for Safety and Health at Work. Atahar, an employee spends a chunk of his or her day at their workplace, and hence it is important to create a healthy workspace where they feel happy to work and more importantly safe in being themselves.
Malkuti kaha, behtar mahol mein productivity badhti hai aur phir dushit mahol hai to na sirf aapke swasth ke liye wo dushit hoga balki aapke manasik swasth ke liye bhi behtar nahi hoga, kyunki manasik swasth agar aapka behtar hai, aap sharirik roop se swasth hain aur active hain, tabhi aapki productivity jo hai, कार्य क्षमता है, उसमें इजाफा होगा।
Yes, absolutely. But the significance of this day cannot be overstated, with around 2.3 million deaths annually attributed to job-related accidents and diseases. That equates to about 6,500 deaths each day. World Day for Safety and Health at Work advocates for effective OSH processes, frameworks and changes through participation and social dialogue.
सही कहा आपने सुभगा, नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के जीवन का एक बहुत लंबा समय वर्कप्लेस पर ही गुजर जाता है। कई वर्कप्लेस पर जोखिम वाले काम भी किए जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कहूं तो फिरोजाबाद की अगर आपने चूड़ी निर्माण देखा होगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा के तापमान में एक मजदूर वहां भट्टी के सामने बैठकर के काम करता है, तो बहुत मुश्किल काम है। उस मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है, विज्ञान की तकनीक का सहारा लेकर हम उस मजदूर की मुश्किल को आसान कर सकते हैं, उसके स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, उसके लिए जो जरूरी सुरक्षा उपकरण हैं उनको हम दे सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ईंट के भट्टे आप देखते हैं, ईंट के भट्टे में वातावरण कितना दूषित होता है, उसका कोई इंतजाम नहीं होता, उनको मास्क तक प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, वहां से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, न सिर्फ ये कि वो वहां उससे मजदूर प्रदूषित होते हैं बल्कि आसपास का माहौल ही प्रदूषण से भर जाता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दूंगा सुभका, उसके बाद आपको मौका पूरा पूरा मिलेगा बोलने का। पीतल के बर्तन जैसे मुरादाबादी बर्तन बड़े मशहूर कहे जाते हैं, कभी आपने उनका निर्माण देखा होगा तो तब आप कहेंगे कि अरे ऐसे माहौल में ये सुंदर जो कलाकृति हैं वो बना करती हैं, तो उनकी सेफ्टी का भी इंतजाम होना बहुत जरूरी है। जिस जगह पर वो काम करते हैं, छोटे छोटे कारखाने होते हैं, वहां पर धुआं भी होता है, वहां डस्ट भी होता है, वहां का वातावरण में धातु के कण भी होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारी का एक कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीबी उनको हो जाती है, कैंसर जैसे भीषण रोग होने का पूरे पूरे चांसेस होते हैं, तो वहां भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए।
यस एब्सोल्युटली, एंड लाइक यू मेंशनड अबाउट द पोल्यूशन एंड द एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इज हैविंग सीरियस इम्पैक्ट्स ऑन द हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क। As this problem intensifies, workers around the globe find themselves at an increased risk of exposures to hazards such as excessive heat, ultraviolet radiation, extreme weather events, air pollution, vector-borne diseases and agrochemicals. Numerous health conditions are linked to climate change, including cancer, cardiovascular disease, respiratory illness and mental health disorders.
बिल्कुल ठीक कहा आपने. जो हमारे जो सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, स्पष्टता उनमें ये सारी चीजों का उल्लेख होता है कि सुरक्षा के पूरे उपकरण वहां पर मौजूद होने चाहिए. अगर कोई आकस्मिक घटना घट जाती है, मिसाल के तौर पर कोई मजदूर जो है वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते, तो वहां पर न सिर्फ ये कि एम्बुलेंस मौजूद होनी चाहिए बल्कि सुरक्षा के जो फर्स्ट एड के जो सामान है, फर्स्ट एड होना चाहिए, जरूरी दवाएं होनी चाहिए, और अगर बड़ी फैक्ट्री है तो वहां पर एक क्लिनिक भी होना चाहिए. ये तमाम चीजें होनी चाहिए.
दीज आर द मिनिमलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स दैट शुड डेफिनेटली बी देयर एट एनी वर्क प्लेस.
बिल्कुल, हमने दिल्ली में महसूस किया था कि पिछले दिनों जब हमारा पर्यावरण बहुत ज्यादा दूषित हुआ, यहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा, तो कई सारी पाबंदियों के साथ साथ जो निर्माण कार्य हैं, जो मकानों के निर्माण कार्य हैं, उनको रोक दिया गया है ना. तो उसमें कई बार जो दिशा निर्देश होते हैं, मिसलन उसको कवर करना होता है, हेलमेट का इंतजाम करना होता है, सेफ्टी जो बेल्ट है उसका इस्तेमाल करना होता है, मास्क लगाने के दिशा निर्देश होते हैं, लेकिन इन सबका उल्लंघन होता है. कई बार जो मजदूर खुद है, जो वर्कर है, वो ही उसको नजरअंदाज कर देता है, जो उसके लिए बड़ा घातक सिद्ध भी हो सकता है. तो ये तमाम तर चीजों पर गौर करने की जरूरत है. सुबह
An ounce of prevention is worth a pound of cure. Small steps taken proactively can thwart safety incidents of epic proportions. So it is the requirement for everyone to take safety of their own self on priority.
एक कहानी सुनी होगी, बल्कि एक कहावत सुनी होगी, सावधानी हटी और
दुर्घटना
घटी. तो ये सबको ख्याल करना होगा. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इस पर बात करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए. जबकि जैसे मजदूर को पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है, उसका जो नियमित परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण है, वो बहुत जरूरी है. इसके अलावा हमने पहले भी जिक्र किया कि आपके कार्य के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि, और जिस तरह का कार्य अगर आपका होता है तो उसके सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होती है. और साथ में एक चीज और मैं कहना चाहता हूं सबका, कि समय समय पर जो सेफ्टी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल भी होने चाहिए, वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, ताकि जो आपके जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड हों, है ना वो प्रशिक्षित हों.
Yes, and promoting, respecting and realizing the fundamental principle and right at work of a safe and healthy working environment also means addressing dangerous climate change impacts in the workplace.
Sorry.
In fact, the theme for this year's World Day for Safety and Health at Work in 2024 is the impact of climate change on occupational safety and health. This theme highlights the significant effects that climate change has on the well-being and safety of workers in various industries and workplaces.
आज के दिन का जो एक मुख्य चीज है वो यही है कि प्रबंधन को भी सचेत होना चाहिए, वर्कर को भी सचेत होना चाहिए, प्रशासन को भी सचेत होना चाहिए, और ऐसी तमाम तर चीजें होनी चाहिए. मिसाल के तौर पर हमने साफ पानी का जिक्र नहीं किया है, साफ पानी भी मुहैया होना चाहिए. आपके जो नेचर्स कॉल हैं, यानी आपके शौचालय हैं, वो भी साफ सुथरे वहां पर होने चाहिए, और विश्राम कक्ष जरूर होने चाहिए, और खेल के सामान भी यदि आवश्यकता है उस वर्क प्लेस पर, तो खेल के सामान यानी वर्जिश करने के सामान, ये तमाम तर चीजें होनी चाहिए. उनके मनोरंजन का ख्याल करना बहुत जरूरी है.
Yes.
और एक चीज और है, हमारे बहुत सारे जो वर्क प्लेसेज हैं, जो निर्माण स्थल हैं, वहां पर डस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी हमें चीजें करनी चाहिए. निचोड़ यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको हमें बेहतर करने की आवश्यकता है.
Yes, and these days the nature of work is continuously evolving, so it is crucial to address these emerging challenges and ensure that occupational safety and health measures keep pace with the changing landscape. And as you rightly mentioned, it's a collective responsibility to foster a positive and healthy work culture on our planet. Proactive measures and a comprehensive approach are necessary to mitigate the potential risks associated with these new work environments and employment structures.
सही कहा आपने सुबह. तो ये तमाम तर चीजें जिन पर हमने चर्चा की है, ये तमाम तर चीजें आज के दिन यानी सेफ्टी के लिए और हेल्थ के लिए, बहुत सारे विश्व भर को अगर आप नजर में रखें तो विश्व भर में ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं जो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहावत को चरितार्थ करती है. तो उनसे रुकना होगा. हमें सचेत होना होगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल करना होगा। प्रबंधन की अगर बात है तो प्रबंधन को सचेत होना पड़ेगा और वर्कर स्वयं को भी सचेत होना पड़ेगा। श्रमिक को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, साथ ही अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए, तभी उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सकेगी और जो वर्क प्लेस है, जो कार्यस्थल है, वहां का माहौल बेहतर हो सकेगा। न सिर्फ ये कि मानसिक रूप से जो एक श्रमिक है वो स्वस्थ होगा, बल्कि वातावरण को भी स्वस्थ करने में ये तमाम चीजें सहायक सिद्ध होंगी। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि क्या कुछ विशेष है उनके पास। उपगा
Yes, with the mantra of the Election Commission, no voter to be left behind, Sambalpur District Administration introduces voter mascots for the upcoming election, namely Voter Dada and Voter Nani, a systematic voters education and electoral participation program totem designed in traditional Sambalpuri dress wears. We have a report.
Voter Dada and Voter Nani mascots is an innovative way to attract voters' attention towards ongoing election activities. They have been commissioned to educate electors regarding procedures relating to registration of names in the electoral roll, modern polling station, Sakhi Booth polling station managed by female polling personnel, PWD managed polling station, information about various online and offline facilities available to voters, ethical voting, among other things. The main aim of the mascots and introducing selfie points is to create voter awareness about the upcoming election as well as encourage new and young voters to participate in voting with the sole objective of increasing voters' awareness about election dates, election timings, their both location, how to vote, various IT applications in the aid of voters and finally to increase voter turnout. The district administration also made animated videos in the Sambalpuri language featuring the Voter Dada and Voter Nani and it is publicizing through social media platforms. The district कलेक्टर अखिल सुनील अग्रवाल से
वोटर मैस्कॉट्स एक जैसे हमारे संबलपुरी भाषा में वोटर दादा और वोटर नानी उनका जो ड्रेसिंग है वो संबलपुरी स्टाइल में है और इसके जरिए हम लोगों तक इलेक्शन से जुड़े सारे मैसेजेस पहुंचाते हैं ताकि लोगों के मन में इलेक्शन से जुड़े जो भी सवाल हो वो उसके जवाब उनको मिले।
वोटर दादा एंड वोटर नानी सेल्फी पॉइंट्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन द कैंपसेस ऑफ द कलेक्टर ऑफिस, संबलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस एंड इन अदर पब्लिक प्लेसेस इन द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। फॉर परिक्रमा दिस इज आलोक बारी फ्रॉम आकाशवाणी संबलपुर।
सुभगा, बहुत सारे पक्षी जो हमने देखे हैं अपने बचपन में, मसलन गौरैया हमारे घरों में अपने घोंसले लगा दिया करती थी। गर्मी के दिन जैसे आते थे तो हमें गौरैया की तलाश होती थी, गौरैया की चहचहाट से हमारा घर गूंज उठता था, लेकिन आज वो गौरैया नजर नहीं आती है, विलुप्त सी हो गई है, खासतौर पर कॉन्क्रीट के जंगल में कहीं खो गई है ना। इस तरह से बहुत सारे पशु पक्षी हैं, गिद्धों का जिक्र यहां पर करना चाहेंगे। गिद्ध भी जो है विलुप्ति के कगार पर हमें नजर आ रहे हैं, तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। अगर देश भर की बात करें तो गिद्धों को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में इनकी गिनती कराई गई है, इस पर सुनते हैं एक रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व के करीब 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र में गिद्धों की गणना कराई गई है। इस इलाके में सफेद गिद्ध पाए जाने की पुष्टि हुई है। प्रदेश के बिलासपुर, मुंगेली और कटघोरा वन मंडल के साथ ही कबीरधाम में गणना का काम किया गया है। सर्वे के दौरान इस इलाके में इजिप्शियन वल्चर, जिसे सफेद गिद्ध भी कहा जाता है, के पाए जाने की पुष्टि की गई है। तेजी से विलुप्त हो रहे गिद्धों की प्रजाति के संरक्षण के लिए वन विभाग का यह कदम बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अचानकमार टाइगर रिजर्व में चल रही गिद्ध संरक्षण परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में शेष बचे गिद्धों की गणना और उनके आवास की खोज की जा रही है। गिद्धों के लिए शुद्ध और खतरनाक दवाओं से मुक्त वातावरण वाले क्षेत्र की स्थापना ही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही प्रदेश में वो इलाके जहां गिद्ध अपने प्राकृतिक आवास में पाए जा रहे हैं, वहां उनके फूड मैनेजमेंट को बेहतर करने की पहल भी की जा रही है। वर्ष 1990 के पूर्व गिद्ध आसानी से लोगों को नजर आ जाते थे, लेकिन वर्ष 1990 के बाद से अब ये बहुत कम दिखाई देते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण मवेशियों पर जहरीली दवाओं का इस्तेमाल है। मृत मवेशियों के मांस के जरिए यह जहर गिद्धों के पेट तक पहुंच जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। भारत सरकार ने ऐसी दवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
And now we move on to Tamil Nadu and Puducherry. Month of Chithirai in Tamil calendar, that is mid-April to mid-May, is the festival month in Tamil Nadu and Puducherry. Among many festivals, Koothandavar temple festival is unique and significant. Pillai Koopam in Puducherry and Koovagam in Tamil Nadu are two places where the Koothandavar festival is held annually in a grand manner. More from our correspondent.
This festival is dedicated to the transgender women community and has the root in the epic Mahabharata. To win in the Kurukshetra war, the Pandavas had to sacrifice life of a valiant soldier to goddess Kali. Lord Aravan, son of Arjuna, offered himself to sacrifice the life for the victory of Pandavas. But he expressed his last wish of marrying a woman and experience marital life for once. Since no woman would agree to marry a man who was supposed to die the next day, Lord Krishna took the form of a woman named Mohini and married Aravan. On the next day, Aravan sacrificed his life. The Koothandavar festival recreates this mythological episode and celebrates the union of various transgender women. Thousands of villagers and transgender women are participating in this festival. In this 18 days festival, several events are arranged to bring focus the transgender women community. The beauty pageant Miss Pillaiyar Koopam and Miss Koovagam is the most attractive event in the festival. In the recently held festival, Sakshi from Puducherry has won the title of Miss Pillaiyar Koopam and Riya from Erode won Miss Koovagam title. For the transgender women, this is not just a title. They believe that the title would give them dignity, respect and acceptance in the society. On the 17th day, the transgender women gathered from various parts of country will dress as brides and transform themselves as Mohinis. In the Koothandavar temple, the priest ties Mangalsutra around their necks to signify the marriage. The whole night, the transgender women celebrate their marriage by dancing and singing. On the next day, a procession takes place with the statue of Aravan on a chariot. Then the tragedy begins. The transgender women assembled in the temple start to improvise widowhood. The priest cut off the Mangalsutra and breaks the bangles. They wear white sari and mourn the death of their husband. Through this ritual, the transgender women traverse psychologically the bond of marriage. The ritual satisfies the unfulfilled dream of a marriage in the life of a transgender woman. This Koothandavar festival make a societal bond between the transgender women community and the rest of the society. This is Sivakumar, Deputy Director, News, Akashwani, Puducherry.
In view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile, giving details of number of phases, date of polling, number of seats, and other relevant facts by our correspondents.
बिल्कुल सुबह लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की विशेष श्रृंखला में आज गुजरात से हमारी विशेष संवाददाता गांधीनगर सीट की जानकारी दे रही हैं, आइए सुनते हैं।
गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र का नाम राज्य की राजधानी गांधीनगर के नाम पर रखा गया है। पिछले तीन दशकों से यह निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें से 5 अहमदाबाद जिले में और 2 गांधीनगर जिले में हैं। इस लोकसभा चुनाव में अमित शाह दोबारा इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की सोनल पटेल समेत कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी राजनीतिक किस्मत का फैसला 21,82,000 से अधिक मतदाता करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी की निगाहें इस हाई प्रोफाइल सीट पर है, जहां भाजपा का लक्ष्य अपना प्रभुत्व बरकरार रखना है और विपक्षी दल इस सीट पर सफलता हासिल करने की होड़ में है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
In our series covering profiles of key constituencies across states and union territories during the Lok Sabha elections, today we bring a report on the Bhopal Lok Sabha seat of Madhya Pradesh. Bhopal has given the country veteran MPs like former President Dr. Shankar Dayal Sharma, freedom fighter Maimuna Sultan, Arif Beg and Uma Bharti.
Bhopal, the capital of Madhya Pradesh and famous for its lakes, is BJP's stronghold for the last 35 years. It is also known as the city of Nawabs. Bhopal was dominated by Congress for 27 years from 1957 to 1984, but since 1989, BJP is in power. However, despite fielding powerful leaders like Nawab Patodi, Suresh Pachauri and former Chief Minister of Madhya Pradesh Digvijay Singh, the Congress has not been able to win the elections again in Bhopal. There are a total of 8 assembly seats seats in Bhopal Lok Sabha seat, out of which 6 are won by BJP and 2 are by Congress. A total of 22 candidates are in the fray in this election for Bhopal Lok Sabha seat. BJP has made ex-Bhopal Mayor Alok Sharma its candidate, while Congress has given ticket to Arun Kumar Srivastav. There are more than 23 lakh voters in Bhopal. This includes more than 11,91,000 male and more than 11,27,000 female voters. Sanjeev Sharma, Akashvani News, Bhopal.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember social reformer Madhusudan Das, who was born on the 28th of April, 1848 at Cuttack district, Odisha. He founded Utkal Sammelani in 1903 that successfully campaigned for the creation of Odisha on the 1st of April, 1936. The first graduate and advocate of Odisha, he is also known as Kulabruddha, Grand Old Man, and Utkal Gaurab, the Pride of Utkal. In Odisha, his birthday is celebrated as the Lawyer's Day on the 28th of April.
Madhusudan Das started Desh Mishra Andolan and worked hard for the social, political and economic uplift of the people of eastern India. He rendered his admirable service to the nation as a very successful lawyer, social reformer and patriot. He was acclaimed as a great legislator and journalist. He was the first Odia to be the member of the Legislative Council and member of Central Legislative Assembly. He had the distinction of being the first Indian minister.
He was also an excellent orator in Odia, English and Bengali. As a writer and poet, patriotism was always at the forefront of his mind, and that was reflected in all his literary works. He penned a number of articles and poems in both English and Odia. Some of his important poems are Utkal Santan, Jati Itihash, and Jananir Ukti.
Jati ro unnati se kahu karibo swarthe jara bhakmana saguna bilua chikitsa kohele sabo ki paibo kana.
Madhusudan Das died on the 4th of February 1934, and by the time of his death, he had spent all his property on the well-being of the people of Odisha. His immense contribution towards the state and nation would be admired forever. We salute the great nationalist.
We also remember martyr Kehar Gajan Singh, who was beaten to death in prison by the British authorities on the 28th of April, 1925. A resident of Hoshiarpur, Punjab, Singh joined the peaceful Sikh Jatha to Jaito Gurudwara, Gangsar, Nabha in 1924 against the British order prohibiting all prayer assemblies.
The Jatha was stopped by the orders of Wilson Johnston, the administrator of Nabha, and the police arrested a number of its members. Gajan Singh was also arrested and beaten to death in Nabhabir jail on the 28th of April 1925. We salute the great son of the soil.
We also remember independence activist Narayan Singh, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. Initially a sepoy in the English East India Company Army in Khandesh, Maharashtra, Singh fought the British at different places in Khandesh. He was caught while defending the British attacks and was charged with desertion and mutiny against the British. He was sentenced to transportation for 10 years and died in the Andaman Islands on the 28th of April, 1860. We salute the great son of India.
और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं खेल गतिविधियां।
In badminton, the Indian women's team have advanced to the quarterfinals of the Uber Cup badminton tournament with a 4-1 victory over Singapore in Chengdu, China today. India lost the opening match of the second tie in Group A with Ashmita Shaliya losing to world number 18 Yeo Jiaming 15-21, 18-21 in the first singles. Later, national champions Priya Kunjigam and Shruti Mishra defeated Shao Enheng and Jin Yu Jia 21-15-21-16 to bring India back. Meanwhile, in the Thomas Cup competition featuring the men, defending champions India will face England tomorrow in their second Group C tie. India had defeated Thailand 4-1 in the opening tie. The Indian trio of Dheeraj Bomadevara, Tarundeep Rai and Praveen Jadhav shocked reigning Olympic champions of South Korea in the recurve men's team event to claim gold at the Archery World Cup in Shanghai. This is the first ever triumph of Indian men's recurve team over the archery powerhouse in a World Cup final. This will boost India's prospects for securing a berth in the upcoming Paris Olympics. Overall, India has 5 gold, 1 silver and a bronze so far, while former world number 1 Deepika Kumari is in the hunt for another medal, playing her women's recurve individual semi-final later in the day. Earlier, reigning Asian Games champion Jyoti Surekha Venam added a 4th gold in women's compound individual section yesterday, while Priyansh settled for a maiden World Cup silver in the men's individual compound section.
और आईपीएल क्रिकेट में आज का पहला मैच गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 15 ओवर में 3 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। आज का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। और अब समय उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। और इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं विनायक कृष्ण गोकाक को। विनायक कृष्ण गोकाक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में गिना जाता है। डॉ विनायक कृष्ण गोकाक का कन्नड़ साहित्य में निसंदेह एक विशिष्ट स्थान है। कवि, उपन्यासकार, समालोचक, नाटककार और निबंध लेखक के रूप में आधी से अधिक शताब्दी का उनका सक्रिय कार्यकाल 1934 में आरंभ हुआ।
And in 1961, he was awarded the Padma Shri from the Government of India for Dyava Prithvi.
बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और आज ही सलीम गौस की भी पुण्यतिथि है, जो कि हिंदी सिनेमा, दक्षिण भारतीय सिनेमा और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय करने वाले फिल्म अभिनेता थे। धारावाहिक भारत एक खोज और सरदारी बेगम और सोल्जर जैसी कई फिल्मों में अभिनय से उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई।
He has also worked in TV serial Vaagle Ki Duniya. In 1989, he portrayed the villain in the Tamil film Vetri Viza, directed by Pratap Potain, as the rival to Kamal Hassan. He starred alongside Mohanlal in the classic Malayalam movie Tazavaram, directed by Bharathan.
बिल्कुल, साथ ही सलीम गौस ने कई सारी यादगार फिल्मों में काम किया, जैसे चक्र है, सारांश है, मोहन जोशी हाजिर हों जैसी फिल्मों में उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि कई सारे पुरस्कार भी उनके झोली में आए।
And now moving on to the birthdays. Today is the birthday of Bhanu Athaiya, born 28 April 1929, was an Indian costume designer and painter. She was the first Indian to win an Academy Award. Alongside being Bollywood's most iconic costume designer, she had a historically important early career as an artist with contemporaries like M.F. Hussain, F.N. Souza and Vasudev S. Gaitonde.
बिल्कुल ठीक कहा आपने। भानु अथैया ने फिल्म गाइड में वहीदा रहमान, ब्रह्मचारी में मुमताज, सत्यम शिवम सुंदरम में जीना तमान के वस्त्र भी डिजाइन किए थे। और साथ ही आपने गांधी फिल्म का हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे, उसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ ड्रेस डिजाइनर का ऑस्कर मिला था।
Yes, and she was also the recipient of National Film Award for Best Costume Design for Lekin in 1991 and Lagan in 2002.
बिल्कुल, और आज ही जन्मदिन है।
Sharman Joshi, who is an Indian film and theatre actor, he has also worked on directed on stage productions in English, Hindi, Marathi and Gujarati languages, but mostly known for his work in Hindi films. He made his debut in Godmother, followed by roles in hit films such as Rang De Basanti, Golmaal, Three Idiots, Ferrari Ki Sawari, and he is best known for his role as Raju Rastogi in the movie Three Idiots.
फिलहाल एक गीत सुनना चाहेंगे, गीत का मुखड़ा सुनना चाहेंगे। Three Idiots फिल्म में Sharman Joshi का जो अभिनेता लाजवाब था, कमाल था, और उसी फिल्म के एक गीत का मुखड़ा।
ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल, मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा,
होंठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया।
एक प्रेरणा मिलती है कि किसी भी स्थिति में आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। और इसी नोट के साथ श्रोताओं से अब अनुमति लेने का समय आ गया है, तो श्रोताओं अनुमति दीजिए। अतहर सईद और सुबह का कॉल को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।